I was remembering when I was a student, a young person from the Indian Air Force visited our college. So what I observed from his life is, and I heard his testimony also.
और जैसे मैंने उसके जीवन को देखा और उसकी गवाही को भी जब मैंने सुना,
he is not a person who is exceptionally gifted.
और वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बहुत ही तालंतों से भरा हुआ व्यक्ति था.
A very natural and ordinary person.
और बहुत ही सामान्य साधारण सा व्यक्ति वो था.
But he said that he realized God can empower him if he learned to trust in him.
लेकिन उसने सीख लिया अगर वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे तो परमेश्वर उसको वो शक्ति दे सकता है.
And one thing he told is in his workplace when he sometimes some task and responsibility that he entrusted to, when he don't find that natural strength, he always, when we cried out to God and prayed, he always found strength from God to do that task which was interesting.
और जब भी वो कहते हैं कि जब भी ऑफिस के अंदर दफ्तर में कभी भी काम दिया गया, वो अपनी सामर्थ्य से करने के लिए वो सक्षम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर से सहायता मांगकर वो अच्छे से उस काम को कर पाते.
So he was telling, however weak I am, however ordinary I am, however inadequate I am, I can always find strength from my heavenly Father.
और वो अपने आप को बहुत ही निर्बल, बहुत ही पर्याप्त नहीं जान पाते थे, और वो हमेशा अपने स्वर्गीय पिता के अंदर उस ताकत, उस सामर्थ्य को प्राप्त करते थे.
I have also observed his spiritual life.
और मैंने उसके आत्मिक जीवन को भी गौर से देखा.
He is not a particularly gifted speaker or anything.
और वो कोई प्रचार करने वाले, बोलने वाले ऐसे कोई तालंत से भरे हुए नहीं थे.
I have seen how God blessed him to make a source of blessing to many people.
लेकिन मैंने देखा कि परमेश्वर ने कैसे उनको इस्तेमाल किया औरों के आशीष का कारण होने के लिए.
In a very silent but a very powerful way, he could influence many people.
और बहुत ही गुप्त रीति से, लेकिन बहुत ही सामर्थ्य रूप से बहुत लोगों को प्रभावित करने के लिए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया.
Again, secret is all, he always, instead of looking at his natural inabilities or inadequacies or his weakness, he always looked to God.
लेकिन गुप्त में वो हमेशा अपनी असामर्थ्य, अपनी कमजोरियों को देखने के बजाय परमेश्वर की ओर हमेशा वो देखते रहते थे.
He could say that I could reveal through his life that I can do all things through Christ Jesus who strengthens me.
और उनको जीवन से यह दर्शाते थे कि परमेश्वर की सहायता से वो सब कुछ कर सकते हैं.
That is a, indeed it's a very scriptural pattern or God's way.
और ये बहुत ही परमेश्वर का और ये बाइबल का तरीका है.
Even in Joel it is said, even when we are weak we can say I am strong in the Lord.
और योएल नबी की पुस्तक में लिखा है कि जब कभी हम निर्बल है तब हम परमेश्वर में बलवान है.
Face some situation in our workplace or anything, or in spiritual life, and have we felt we are weak, we are inadequate, I cannot do it with my own? Have we felt that?
और क्या हमने हमारे काम की जगह पर, हमारे आत्मिक जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया कि बहुत निर्बल हूँ, मुझ में वो पर्याप्त ताकत नहीं? क्या हमने ऐसा कभी महसूस किया है?
Or our tendency is to rely on our own ability to speak, our own smartness, our own skills that we have. We tend to lean on that.
या फिर उसके बजाय हम हमारी जो कुशलता है, हमारे जो तालंत है, उस पर हम निर्भर होते हैं आगे कुछ करने के लिए.
But God's ways is that when we find our own weakness, when we find our own inadequacy, that is when the strength of God will reveal in us.
और परमेश्वर का तरीका यह है कि जब हम अपनी निर्बलताओं को जान जाते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है.
I remember a time when many years back when something came to me like a kind of revelation, understanding, which really remained in me.
और कुछ सालों पहले एक प्रकाशन जो मेरे जीवन में आया और वो बहुत सालों से मेरे अंदर रहा.
That is John chapter 15 verse 5.
और यूहन्ना 15:5.
Jesus said that without me you can do nothing.
और यीशु मसीह कहते कि मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते.
So I realized deep in my heart that truth that apart from Jesus I just can do nothing.
और मेरे हृदय की गहराई में सत्य को मैंने मान लिया कि यीशु मसीह से अलग होकर उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता.
That is a thing which really helped me in my life.
और इस बात ने मेरे जीवन में बहुत ही मुझे मदद मिली.
And when I realized that I also responded to Jesus in this way, Lord, I also don't want to seek to do anything in my own strength.
और उसी के साथ मैंने परमेश्वर को खोजा कि प्रभु मैं अपने सामर्थ्य, अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं करना चाहता.
Even in some area I think I am strong, I am good, I am able, I don't want to seek to do anything in my own strength.
यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों के अंदर मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, तालंतित हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं करना चाहता.
But I want to do everything by the strength I receive from God.
और हर एक चीज़े मैं परमेश्वर की ताकत को पाकर उसकी सामर्थ्य से करना चाहता हूँ.
So it's a strong encouragement for all of us.
और ये बहुत ही अच्छा एक प्रोत्साहन हम सबों के लिए है.
In Psalm 103, the psalmist is telling something.
और 103 भजन में भजनकार इस प्रकार कहता है,
इन साम 103
103 भजन संहिता,
वर्स 14,
उसका 14 वचन,
फॉर ही हिमसेल्फ नोज आवर फ्रेम, ही इज माइंडफुल दैट वी आर बट डस्ट,
क्योंकि वह हमारी सृष्टि को जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य केवल मिट्टी है।
डू वी सी आवरसेल्फ्स एज डस्ट,
और क्या हम अपने आप को मिट्टी के रूप में जान पाते हैं?
गॉड नोज दैट वी ईच वन ऑफ अस आर लाइक अ डस्ट, ही इज माइंडफुल दैट वी आर अ डस्ट,
और परमेश्वर को स्मरण है, वो जानता है कि मनुष्य एक मिट्टी है।
इट्स गुड वी आल्सो रियलाइज दैट विदाउट गॉड वी आर नथिंग बट डस्ट,
और ये अच्छी बात है कि ये जान लेना कि परमेश्वर के बिना हम भी एक मिट्टी के समान है।
एंड गॉड विल स्ट्रेंथन पीपल हु एक्नॉलेज दिस ट्रूथ,
और जो लोग इस सत्य को जान जाते हैं परमेश्वर उनको सामर्थ देता है।
एंड again you know if you the greatest apostle is Paul,
aur sabse bada jo prerit Paul hai,
he had a wonderful disciple, a co-worker and a co-apostle,
aur uska ek sahakarmi ek shishya tha,
Timothy, much younger to Paul,
aur Paul se bahut hi umar mein kam tha, jawan tha wo.
How was this person Timothy?
और ये कैसा व्यक्ति था तिमथी?
वेरियस स्क्रिप्चर वी रीड वी कैन अंडरस्टैंड ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी ए वीकलिंग काइंड ऑफ पर्सन,
और ये बहुत ही साधारण व्यक्ति और बहुत ही निर्बल व्यक्ति है तिमथी।
वी गॉट ही व्हेन पॉल इज रिमेंबरिंग इन सेकंड तिमोथी फर्स्ट चैप्टर वी कैन रीड ही रिमेंबरिंग हिज टियर्स,
और दूसरे तिमथी दूसरे अध्याय के अंदर पॉलस उसके आंसू को याद करता है।
नो व्हेन ही एनी रिकॉग्नाइज हिज ओन लाइफ इज लाइक ही प्रोबब्ली ओपनिंग सर गॉड व्हाट एम आई एंड आस्किंग गॉड टू स्ट्रेंथन हिम एंड एक्नॉलेजिंग हिज एंड ही यूज्ड टू क्राई बिफोर गॉड,
और वो परमेश्वर के सामने अपनी निर्बलता को जानकर आंसू के साथ वो रोता है।
एंड हाउ गॉड हाउ पॉल इज एनकरेजिंग हिम,
और पॉलस कैसे उसको प्रोत्साहित करता है,
इन 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7
और दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 7 वचन के अंदर,
इज पॉल इज टेलिंग हिम गॉड हैज नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ टिमिडिटी बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड ऑफ साउंड माइंड,
और पॉलस वहां पे लिखता है कि परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया पर सामर्थ संयम और प्रेम का आत्मा दिया है।
व्हाई पॉल हैड टू टेल दैट,
और पॉलस को इस प्रकार क्यों कहना पड़ा?
तिमोथी वाज बाय नेचर वेरी टिमिड पर्सन, स्केर्ड लाइक नो टिमिड पर्सन, फियरफुल पर्सन,
और क्योंकि तिमोथी का स्वभाव जो था बहुत ही डरने वाला, एक अपने आप को संकुचित मन का एक व्यक्ति था।
ही वाज नॉट ए नेचुरली वेरी बोल्ड आउटस्टैंडिंग extrovert kind of person, as
Timothy एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बाहरी तौर से बहुत ही अच्छा और बहुत ही कुशल और बाहरी तौर से बात करने वाला व्यक्ति
है। He was so timid but still God could accomplish so much through him,
वो इतना भय में रहने वाला व्यक्ति लेकिन परमेश्वर फिर भी उसके जीवन के द्वारा कार्य करता है।
God Paul encouraging God has not given us a spirit of timidity but God has a spirit of power and of love and of sound mind,
और वहां पे पॉलस उसे प्रोत्साहित करते हुए लिखता है कि भय का आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया पर सामर्थ संयम और प्रेम का आत्मा दिया।
So that is something we can, when we realize our own limitation, our own weaknesses, our own timidity, we can seek God to receive the power of spirit of power and of love and of sound mind,
aur yahi hota hai jab hamari maryadao ko hamari kamzori ko jab hum jaan lete tabhi hum parmeshwar ke prem sayam aur samarth ko prapt kar pate hain.
And in 2 timothy chapter 2
dusra timothy dusra adhyay ke andar
paul is again encouraging timothy,
paulus yahan aur ek bar timothy usko protsahit karta hai,
verse 1 2 timothy chapter 2 verse 1
dusra timothy dusra adhyay ek vachan,
you therefore my son be strong in the grace that is in Christ Jesus,
isliye mere putra tu us anugrah se jo masi yeshu mein hai balwant ho ja.
So here paul is encouraging timothy, calling him my son, timothy be strong,
aur paulus timothy ko apna putra maan kar yahan par keh raha hai tu balwant ho ja,
and especially in the grace that is in Christ Jesus,
aur yeshu mein jo anugrah hai usme tu balwant ho.
We all can be strong in the not in a earthly worldly way, others think in a physical sense, in a carnal level kind of strong person who impose on others, lord over others, not in that sense,
duniya ki taur pe nahi, aise duniyai baaton ke andar nahi, bahari dikhne wali cheezon ke andar jo dusron ki aur dabav dalti hai wo balwant duniya ki taur se nahi bata raha wo,
but we can be strong in the grace that is in Christ Jesus,
lekin yeshu masi mein jo anugrah hai usme hum balwant ho sakte hain,
that is where we need to seek,
और वहां पर हमें खोजने की जरूरत
है। स्ट्रॉन्ग इन द ग्रेस दैट इज इन क्राइस्ट जीसस।
और यीशु मसीह में जो अनुग्रह उसमें हम बलवंत हो जाए।
सेकंड पीटर चैप्टर 13 सेम थिंग इज रिटन।
और दूसरा पत्र तीन अध्याय में भी इसी प्रकार लिखा है।
इन सेकंड पीटर चैप्टर 3:17-18
दूसरा पत्रस 3:17-18
यू देयरफॉर बिलीवर नोइंग दिस बिफोरहैंड बी ऑन गार्ड so that you are not carried away by the error of the unprincipled men and fall from your own steadfastness, but grow in the grace and the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ.
इसलिए प्रियो तुम लोग पहले से इन बातों को जानकर चौकस रहो ताकि अधर्मियों से भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो पर हमारे यीशु मसीह उद्धारकर्ता के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ।
So we can grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
और हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह उसकी पहचान में हम बढ़ते जा सकते हैं।
We should be seeking to grow in the grace that is in Jesus Christ.
और यीशु मसीह में अनुग्रह जो पाया जाता है उसमें हमें बढ़ना है।
And there are some scriptural verses which you all familiar know.
और कुछ वचन जो हम जानते हैं।
For example, John, James chapter 4:6
और यूहन्ना 4:6
God resists the proud, but give grace to the humble.
और याकूब 4:6 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है लेकिन घमंडियों का सामना करता है।
और God opposes the proud, but give grace to the humble.
उस प्रकार लिखा है कि घमंडियों का सामना करता है पर दीनों को अनुग्रह देता है।
So grace can be received only by those who are humble.
और जो लोग नम्र और दीन हैं मन के उन्हीं को अनुग्रह प्राप्त हो सकता है।
Only way to receive grace and growing grace is to be more humble.
और उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए अनुग्रह में बढ़ने के लिए हमें नम्र रहने की जरूरत है।
So we can work in the area where we are subtle way we are really proud.
और हमें उन क्षेत्रों के अंदर काम करने की जरूरत है जहां बहुत घमंड से भरे हुए हैं।
We have to break our pride. That is when God can give us grace.
और उस घमंड को टूटने की जरूरत है और वहीं पर परमेश्वर हमें अनुग्रह दे सकता है।
And to live a proud life is a dangerous life. God opposes such people.
और बहुत ही ये बहुत डेंजरस है घमंड से भरा हुआ जीवन परमेश्वर उनका सामना करता है।
Pride people can never succeed. They can never find the grace of God.
और जो घमंडी लोग हैं वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर उनका सामना करता है।
But God gives abundant grace to those who are humble.
लेकिन परमेश्वर भरपूर अनुग्रह देता है जो नम्र लोग हैं।
And that is a kind of grace that we all need.
और इस प्रकार का अनुग्रह सबों को चाहिए।
And when we find grace, there are a lot of things naturally happen.
और जब हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं बहुत ही स्वाभाविक तौर से बहुत सारी चीजें होने लगती हैं।
For example, we overcome sin by grace.
और हम अनुग्रह से ही पाप के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं।
Romans 6:14 says that.
रोमियो 6:14 इस प्रकार कहता है।
Sin shall not have dominion over us. Because we are not under law but under grace.
और पाप की आप पर प्रभुता न होगी क्योंकि हम व्यवस्था के नहीं पर अनुग्रह के अधीन हैं।
If we are growing under grace, sin cannot have dominion over us.
अगर हम अनुग्रह में बढ़ते हैं तो पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता।
Think about our in any area where we sin is having dominion over us. It's beyond what we can manage. Sin is having dominion over us.
सोच के देखिए हमारे जीवन के अंदर ऐसे क्षेत्र जहां पाप की प्रभुता हमारे नियंत्रण से बाहर हमारे ऊपर राज करता है।
But when you live under grace, when you grow in grace, sin will sin cannot have dominion over us.
लेकिन जब हम उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं उसमें बढ़ते हैं तो पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता।
And in Ephesians chapter 6,
Ephesians 6 अध्याय के अंदर,
again we read verse 10,
10 वचन,
finally be strong in the Lord and in the strength of His might.
प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो।
इट्स अ पावरफुल एंड एनकरेजिंग स्क्रिप्चर।
ये बहुत ही सामर्थ्य एक प्रोत्साहन का वचन है।
गॉड इज इन द वर्ड ऑफ गॉड इज एनकरेजिंग अस एंड गॉड वांट्स टू सी आवर लाइफ।
और परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करते इस वचन में कह रहा है।
एज रिटन हियर बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट।
और प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो।
दिस इज हाउ गॉड वांट्स ईच वन ऑफ अस टू लिव।
और परमेश्वर हम सबों से इस प्रकार व्यवहार बात करना चाहता
है। To be strong increasingly in the Lord and increasingly in the power of His might.
और प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत बनते जाएं।
There are certain things written there.
और कुछ बातें यहाँ लिखी गई हैं।
In verse 12.
और 12 वचन में।
Ephesians chapter 6 verse 12.
Ephesians 6:12.
Speaking about a struggle.
और वहाँ पे एक युद्ध के बारे में लिखा
है। We all have a struggle.
और हमारा एक संघर्ष हम सबों का होता है।
It's good to recognize that we all have a struggle.
और इसको जानना बहुत अच्छी बात है कि हम सब संघर्ष से गुजरते हैं।
But unfortunately, ignorantly, we catch up with the wrong struggle.
लेकिन हम अनदेखा करते हैं और कई बार हम दुर्भाग्यपूर्ण हम एक गलत संघर्ष को हम देख पाते हैं.
Someday we struggle with the human beings.
और सोमवार को हम एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं.
Maybe someday even in families where husband and wife God expects to be the closest in the world personal relationship, even there is a struggle instead of a perfect unity.
और पति पत्नी के अंदर एक एकता होने के बजाय भी एक संघर्ष होता है कि जहां वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए संघर्ष करते
हैं. There can be struggle between brothers and sisters. May not be so visible, but inside a battle is going on.
और भाई और बहनों के बीच में कोई संघर्ष हो सकता है, बाहरी तौर पर नहीं लेकिन भीतरी ये संघर्ष चलता है.
The struggle may be in a workplace.
और हमारे काम की जगह पे हम शायद संघर्ष को देखते हैं.
With the unbeliever, we struggle, battle, we all boiling inside.
और अन्य जाति के साथ हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो संघर्ष चलता है.
But Bible says our struggle is not against any flesh or blood.
और लेकिन वचन कहता है कि मांस और लहू के विरोध में हमारा कोई युद्ध नहीं है.
This is a secret and a resolution we need to have.
और ये एक बहुत ही ये ऐसी बात है जो हमारे जीवन के अंदर हमको इसको लागू करना
है. I will not pick up a struggle with any human being.
और मेरा जो संघर्ष किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं होना चाहिए.
That's some secret we need to know. But our struggle is against principalities and powers.
लेकिन यहाँ जो हमारा है प्रधानों से और अधिकारियों से.
And the wicked powers of the heavenlies.
और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं के साथ.
If you waste our energy in picking with our fight and struggle with human beings, husbands, wives, brothers, sisters, children, workplace, with the boss, with our subordinates, we will not find power to fight against the real enemy.
अगर हमारी ताकत को हम संघर्ष करने हमारे परिवार के अंदर भाई बहन हमारे सहकर्मी के साथ कहीं पर भी किसी व्यक्ति के साथ में अगर उसको हम व्यर्थ कर देते हैं तो हमारा जो सही शत्रु है उसके साथ लड़ने के लिए हमारे पास ताकत नहीं होगी.
It's a good to reflect in our own life a moment silently.
और ये शांत रीति से जीवन में जांचने वाली बात है.
At this point of time, with whom are we struggling?
और इस समय हम किस के साथ हम संघर्ष में या युद्ध में हैं?
Is it with our husband?
क्या हमारे पति के साथ?
Is it with our wife?
क्या पत्नी के साथ?
Is it with some difficult children?
क्या बच्चों के साथ?
Is it with our boss in the office?
क्या बॉस के साथ ऑफिस में?
Or is some difficult people who are working under us?
क्या हमारे हाथ के नीचे जो काम कर रहे कठोर लोग उनके साथ?
Or with the government?
और या कोई सरकार के साथ?
Our struggle is with whom?
और हमारा संघर्ष या युद्ध किसके साथ है?
Have we missed the point?
और क्या हमने उसको खो दिया है उस बात को?
Are we struggling with the wrong people?
क्या हम गलत लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं?
And we miss to realize what the real struggle is.
और हम लोग वहाँ पे भूल जाते हैं कि क्या जो सही संघर्ष क्या है?
It's a truth we need to realize. Our struggle should not be with any human being.
और इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है कि हमारा संघर्ष युद्ध किसी भी व्यक्ति के विरोध में नहीं है.
Till today, if we are struggling, continuing to struggle with somebody, we have to cease struggling there. We have to focus our attention on our real enemy, who is the devil.
अगर आज के दिन तक अगर हमारा संघर्ष किसी भी व्यक्ति के साथ रहा हो तो उसको हमें बंद करना है और जानना पहचानना कि हमारा सही शत्रु जो है जिसके साथ संघर्ष है वो शैतान है.
We should not waste our energy fight with the human beings.
और मनुष्य के साथ झगड़े करने के अंदर संघर्ष करने के अंदर हमारी ताकत को व्यर्थ नहीं करना.
There should be a full stop there.
और वहां पर एक विराम होना चाहिए, बंद होना चाहिए वो.
Period.
और उस चीज को.
No more struggle with any human being.
और आज से लेकर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई संघर्ष नहीं.
Because I realize the real struggle is with the heavenly powers, wicked powers.
लेकिन हमारा जो संघर्ष जो युद्ध है दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ है.
So when you realize that God will empower, it's written that verse 13.
और 13 वचन में कि जब हम इसको जान जाते हैं परमेश्वर तब हमें बल देता है.
Take up the full armor of God that you may be able to resist in the evil day and having done everything to stand firm.
और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको.
When we realize our struggle is God is willing to equip us with the full armor of God.
और जब हम पहचान जाते कि हमारा संघर्ष शैतान उसकी दुष्ट की सेना के साथ तब परमेश्वर सारे हथियारों से हमें लेस करता है.
And then we can resist that struggle and we can take victory.
और तब हम उसका सामना कर सकते हैं और हम विजय को ले सकते हैं.
And especially I have noted in the past, good to read the past when you're alone and meditate.
और हम इस वचन को जब हम अकेले तब इस पर पढ़ के इस पर मनन कर सकते हैं.
In verse 6 in this passage there's especially written something in addition to take up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one.
और 16 वचन में लिखा है कि इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको।
We should realize that the evil one is continuously trying to throw arrows into our life, into our mind and our hearts.
और हमको ये जानना है कि दुष्ट हमेशा हमारे जीवन के अंदर, हमारे कानों के अंदर हमेशा वो जलते हुए तीर भेजते रहता है।
It can be arrows of doubt about God.
वो तीर हो सकता है परमेश्वर पर संदेह का।
It about arrows of doubt about others.
वो तीर हो सकता है किसी और के ऊपर संदेह करने का।
Suspicion about others.
किसी के और के ऊपर शंका करने का।
All sort of negative things. They will continuously try to throw at our mind.
और दूसरों के प्रति नकारात्मक बातें हमेशा शैतान दुष्ट जो है ये तीर भेजते रहता
है। So it is by the shield of faith that we can resist this.
और विश्वास की ढाल के साथ हम इसका सामना कर सकते हैं।
It is by the shield of faith that we can protect us.
विश्वास की ढाल के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित या अपने आप को बचा सकते हैं।
It's written how powerful is a shield of faith. It can extinguish the flaming arrows of the evil one.
ये विश्वास की ढाल कितनी सामर्थ्य है कि जलते हुए तीरों को बुझा सकता है।
It's good to realize our battle is in our mind.
और हमको इस चीज को जानना है कि हमारा जो युद्ध जो है हमारे मन में है।
The way we yield our thoughts, that is our personality is going to be that way.
और जैसे हम अपने विचारों की तरफ झुकते हैं, हमारा जो पर्सनालिटी जो है, हमारा जो जीवन है, उस प्रकार वो होगा।
That is why our thought process, we have to bring it under obedience to Jesus Christ.
इसलिए हमारा जो सोचने का, जो हमारा मन या विचार है, परमेश्वर के आज्ञाकारिता और अधीनता में लाना
है। We can continuously pray this prayer, Lord, I want my thoughts, everything to be under the subjection of the Holy Spirit.
और हमें निरंतर प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरा मन, मेरे विचार हमेशा पवित्र आत्मा के अधीनता में रहे।
If we don't do that, devil will take a mess of our mind, thought process.
अगर हम ऐसा नहीं करते तो शैतान जो है हमारे हमारे जो विचार है उसको पूरी तरह से वो गंदा कर देगा।
Even open the doors of our mind for all the arrows of the wicked one, we can lose our senses.
और यहाँ तक कि हमारे सारे जो मन के दरवाजे उसको खोलकर सारे जो तीर है वो सारे चीजें हमारे जीवन को दूषित करने
आएंगे। So there's a tremendous need to protect our thought life.
और ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे जो मन या हमारे विचारों का जीवन सुरक्षित रहे, सुरक्षा रहे।
And preserve it from the fiery arrows of the evil one.
और जो दुष्ट के जलते हुए तीर, उससे बचा के रखना मन को बहुत जरूरी है।
When you don't believe in the word of God, in the promises of the word of God, the protection provided in the word of God, and you choose to believe devil's lies, we will become weak.
और जब हम वचन पर, उसकी आज्ञाओं पर या उसके वायदों पर हम भरोसा नहीं रखते हैं, तब हम शैतान की बातों को मानकर बहुत निर्बल बन जाते हैं।
इन सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 10,
दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय,
सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 10, या 3-5,
3-5,
Second Corinthians chapter 10, 3-5.
दूसरा कुरिन्थियों 10, 3-5.
For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ.
क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं।
There is a real need constantly bringing our thoughts under captivity to the obedience of Christ.
और ये बहुत ही हमेशा की एक जरूरत है कि हमारे विचारों को परमेश्वर के बंधन और उसकी आज्ञाकारिता के अंदर लाना।
If we need to give a joyful, happy Christian life, that is one single most important thing we need to do.
अगर आपको बहुत ही आनंदित ऐसा मसीह जीवन जीना है, तो सबसे पहली मुख्य बात यही है।
If we choose to receive all the fiery arrow, the speaker negative things about the devil will try to put in our mind, we receive it, harbor it, when our joy will be lost.
और अगर वो जलते हुए तीर, जो नकारात्मक बातें शैतान हमारे मन में डालता है, अगर उसको हम लेते रहेंगे, तो जो आनंद है वो उसको हम खो देंगे।
And there's a saying that an empty mind is devil's workshop.
और एक कहावत है कि जैसे खाली जो हमारा मन होता है वो कारखाना है शैतान का।
So our mind we should not render out to devil to use as his workshop.
इसलिए हमारा मन हमको कभी भी भाड़े पर शैतान को नहीं देना है उसका कारखाना बनने के लिए।
We should not allow devil to use our mind as his workshop.
और हमारा मन जो उसको देना नहीं है ताकि उसको वर्कशॉप के जैसे हमारा उसका वर्कशॉप करके इस्तेमाल करे,
दैट विल बी अ डिजास्टर थिंग,
और ये बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है।
सो मे गॉड हेल्प अस टू नाउ एक्टिवली प्रे दिस प्रेयर एंड सीक एंड अलाउ होली स्पिरिट टू गिव अस गुड थॉट्स, हार्बरिंग प्रिजर्विंग गुड थॉट्स इन आवर माइंड।
और परमेश्वर सच में हमारी सहायता करे पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमारे अंदर वो अच्छे और उत्तम विचार हमारे जीवन के अंदर हमेशा रहे।
एंड बाय फेथ, बाय द शील्ड ऑफ फेथ, रेजिस्टिंग ऑल द नेगेटिव थॉट्स,
और विश्वास की ढाल के द्वारा सारे नकारात्मक उन बातों को हम सामना करते रहे।
इट कैन बी डिस्करेजिंग थॉट्स, इट कैन बी डर्टी थॉट्स, इट कैन बी नेगेटिव थॉट्स अबाउट अदर्स, थॉट्स ऑफ सस्पिशन, थॉट्स ऑफ डाउट, All kind of negative things.
और सारे नकारात्मक विचार हो सकते, गंदे विचार हो सकते, निराशा के विचार हो सकते, ऐसे सारे विचारों को हम सामना करें विश्वास की ढाल से।
We can overcome all in by the help of the Holy Spirit.
ये सारी चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं।
In the same way, I am telling this in I used to pray at prayer. It is applicable even in our emotions.
और ये मैं इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ, हमारी भावनाओं के अंदर भी ये लागू होता है।
Our emotions are good. Other way, we are not human beings.
हमारी भावनाएं अच्छी है, अगर भावनाएं नहीं है तो हम लोग मनुष्य नहीं कहलाते।
But emotions are transient, will change. Our feelings, emotion, those will change.
लेकिन हमारी भावना जो है वो बदलती रहती है।
But still they are important.
लेकिन फिर भी वो मुख्य है।
So our emotions also should be under the control of the Holy Spirit.
यहाँ तक कि हमारी भावनाएं जो है वो भी पवित्र आत्मा के अधीनता में होना जरूरी है।
We should be cherishing and nourishing good emotions in us.
और हमारे अंदर एक अच्छे भावनाओं को हमको लाना है हमेशा।
So that we can live a good, balanced, life.
ताकि हम एक संतुलित, एक अच्छा जीवन जी सके।
We can see people play tantrums, etc. What does it mean? Their emotions are not under control.
और कुछ ऐसे कुछ चीजें वो करते हैं जिसके द्वारा उनके जो भावनाएं उनके नियंत्रण में नहीं है।
They have no control about their emotions.
उनकी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं है।
They suddenly burst into anger sometime.
और कई बार वो अचानक से गुस्से में आकर पूरी तरह से क्रोधित हो जाएंगे।
They would do anything which normally they would not do.
और ऐसा कुछ कर देंगे जो वो साधारण तौर से अपने खुद के आपे में नहीं कर पाते।
Somebody does song negative, it can be such depression, negative thought, discouragement.
और कुछ लोग इतने नकारात्मक हो जाएंगे कि निराशा के अंदर वो चले जाते हैं।
So we will not allow those, we should not allow those negative thoughts, negative emotions to have power over us.
ये नकारात्मक भावना, ये विचारों पर हम पर हावी नहीं होने देना है।
We should seek Holy Spirit to be in charge of our emotions.
और यहाँ तक पवित्र आत्मा को हमारे जीवन की जो भावनाएं हैं उसके ऊपर उसको इंचार्ज करना है।
God will really help us.
और परमेश्वर हमारी सच में सहायता करेगा।
In Romans chapter 8:26
और रोमियो 8:26 के अंदर
we read that in the same way, Romans 8:26. In the same way, Spirit also helps our weaknesses.
इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है।
It's a tremendous thing. Holy Spirit, one of the Holy Spirit role is, it is good to understand, we should understand, one of the Holy Spirit's important role is to help us in our weaknesses.
और पवित्र आत्माओं के एक मुख्य जो कार्य है वो है कि हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करना।
Do we realize that?
और क्या हम इसको जान पाते हैं?
When we feel that we are weak, Holy Spirit can help us, strengthen us.
और जब हम जान जाते कि जब हम निर्बल है तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता, हमको बल देता है।
That's what written there. In the same way, Spirit also helps our weakness. Helps our weakness.
इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है।
In every area we feel weak. Spirit, Holy Spirit can strengthen us, help us in our weakness.
और जिन जिन क्षेत्रों के अंदर हम निर्बल महसूस करते हैं, पवित्र आत्मा हमें वहाँ पे सहायता करके हमें बल दे सकता
है। Is not a wonderful thing?
और क्या ये अद्भुत बात नहीं
है? We have such a helper available to us.
और ऐसा एक सहायक हमारे पास उपलब्ध है।
Are we seeking and taking the help of the Holy Spirit in areas where we think we are weak?
और क्या पवित्र आत्मा को हम सहायता लेते हैं जिस क्षेत्रों के अंदर हम निर्बल है?
There is no area where we think I am weak and live a defeated, failed life. That is not God's purpose at all.
और परमेश्वर की ऐसी कोई योजना नहीं कि हम एक हारा हुआ, एक निराशा से भरा जीवन जिए।
Same principle we can see in 2 Corinthians chapter 12.
और दूसरा कुरंथी 12 अध्याय के अंदर इसी प्रकार हम देखते हैं।
Second, we very well known, when Paul had an experience of devil tormenting him.
और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही जाना पहचाना वचन है जहाँ शैतान पौलुस से बात करता है।
Maybe physical ailment which he desired really earnestly to to be delivered from.
और पौलुस के अंदर शायद ऐसी कोई बीमारी होगी, उससे वो शायद चंगाई प्राप्त करने की उसकी इच्छा होगी.
And he prayed three times.
उसने तीन बार प्रार्थना किया.
But Jesus answered him.
लेकिन यीशु ने वहाँ उत्तर दिया.
Second Corinthians 12:9.
दूसरा कुरिन्थी 12:9.
My grace is sufficient for you, Paul.
मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, पॉल.
My power is perfected in weakness.
क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है.
Those who are using Bible, you know, these verses are written in a red letter. What does it mean? It is spoken by Jesus.
और यहाँ पर जब हम बाइबल में देखते हैं, लाल अक्षर में इसको लिखा गया, क्योंकि वो यीशु के द्वारा कहा गया है.
It is something very specifically spoken by Jesus personally to Paul.
और खास करके वो पौलुस को व्यक्तिगत रूप से यीशु के द्वारा कहा गया वचन है.
When he was overwhelmed in his weakness.
जब वो अपने निर्बलता से घिरा हुआ था.
So Jesus said, "My grace is sufficient for you."
यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है.
For my power is perfected in your weakness.
क्योंकि मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है.
It's good to understand. If you hear that from Jesus, it's a wonderful thing.
ये बहुत ही अच्छी बात जानने के लिए कि जब हम यीशु से ऐसी बात सुनते हैं.
When Paul heard this, when he received it, he stopped praying for that deliverance from that situation.
जब पौलुस ने इसको सुना, उसको ग्रहण किया, तो उसने अपने छुटकारे या चंगाई के लिए प्रार्थना करना बंद कर दिया.
When he realized that, when I'm weak, that is when the power of Jesus can be perfected in my life.
और उसने जान लिया कि जब मैं निर्बल हूँ, तब परमेश्वर की सामर्थ मुझ में बलवंत होती है.
Then he is saying that most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me.
इसलिए वो आगे कहता है कि इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे.
This is some wonderful response when the revelation or understanding of the availability or grace of God, he realized he could say that.
और ये बहुत ही अद्भुत एक प्रत्युत्तर पौलुस देता है जब उस परमेश्वर की अद्भुत उस सामर्थ को वो उसकी ताकत को जान जाता है.
नॉट कंस्ट्रेंड और विद स्ट्रगल, ही सेज मोस्ट ग्लैडली,
लेकिन संघर्ष के साथ नहीं, लेकिन बड़े आनंद के साथ वो कहता है.
He started boasting in his weaknesses.
अपने निर्बलताओं में वो घमंड करना आरंभ करता है.
And he's also saying that verse 10, therefore I am contented with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong.
10 वचन में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रव में और संकट में प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ.
May God really help us, brothers and sisters, that when we feel that we are weak, when we realize our own weakness, that is when the power of Christ can be perfected in us.
और सच में भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारी मदद करे जब हम इस चीज को जान ले कि जब हम निर्बल है तब परमेश्वर की सामर्थ हमें सिद्ध होती
And
है.
When you truly realize we can even gladly even boast about our weaknesses, because we know that when we are weak, then that is the time when Jesus can empower me.
और सच में हम जब इस चीज को जान जाते हैं कि जब हमारी निर्बलता को हम तब हम घमंड कर पाएंगे, तभी परमेश्वर की सामर्थ हमें सिद्ध होती है.
I just want to something which I like. I just want to share from from Romans chapter 15.
रोमियो 15 अध्याय से कुछ पढ़ना चाहता हूँ.
Suppose we are strong, how does we deal with others?
और जब हम बहुत ही बलवान हैं, तब हम औरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं?
Romans 15 verse 1.
रोमियो 15:1.
We who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength and not just please ourselves.
अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे.
So when we are really strong, we all want to be strong, right? We don't want to be considered as weak people.
और जब हम अपने आप को निर्बल जानना पहचाना नहीं चाहते, लेकिन जब हम अपने आप को बलवान समझते हैं.
When we are really strong,
जब हम बलवान हैं सच में,
when we can tolerate others,
तब हम निर्बलों को सहले, औरों को सहले.
We can tolerate the weaknesses of others,
और औरों की निर्बलताओं को तब हम सहले.
We can overlook the weaknesses of others,
और जो औरों की जो निर्बलता है उसको हम नजरअंदाज कर दे.
We can easily forget and give some allowance for others,
और बड़े आसानी से हम लोगों को माफ कर दे, लोगों को भूल जाए, इस प्रकार से हम उनके साथ व्यवहार करें.
That is a true mark of strength.
और यही एक बलवान होने का एक चिन्ह है.
When we are really strong in the Lord, it is easy to get along with others.
और जब हम परमेश्वर में सच में बलवान बन जाते हैं, औरों के साथ व्यवहार करना आसान हो जाता है.
We will not pick up any competition with others.
और किसी के साथ हम प्रतियोगिता तभी नहीं करते.
We will not be focusing our attention on the weak people.
और हम हमेशा किसी निर्बल भाई बहन के ऊपर हमारा ध्यान लगाएंगे नहीं.
I can always encourage, lift them up, encourage them.
और हम निर्बलों को हम हमेशा प्रोत्साहन देंगे, उनको उठाएंगे.
It is an important thing to remember.
और ये बहुत ही मुख्य बात है इस पर याद करने के लिए.
To ask ours, you know, it's a kind of test also. You know, we can test with our showing, we can measure our own strength, spiritual strength, by the way we are able to tolerate, bear others.
और ये एक टेस्ट के समान अपने आप को ले सकते हैं कि हम कितने आत्मिक बलवान हैं, उसको चेक करने के लिए हम देखें कि हम औरों की निर्बलताओं को कितने हद तक सह पाते हैं.
So we also know the opposite of being strong is being weak.
और जो बलवान का जो विरोधी है वो निर्बल होना है.
God does not want us to be weaklings.
और परमेश्वर हमेशा हमें एक निर्बलता के अंदर ही ऐसा नहीं चाहता.
Easily offended, easily discouraged.
और बहुत आसानी से निराश हो जाए, बहुत आसानी से उनको बुरा लग जाए, ऐसे नहीं.
There's a wonderful passage in 1 Corinthians. I'm just concluding. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians 3:1-3.
और पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 1-3 के अंदर अच्छा वचन जो है वहाँ.
I, brethren, could not speak to you as spiritual men, but as to men of flesh, as to infants in Christ. I gave you milk to drink, not solid food, for you were not able to receive it. Indeed, even now you are not able, but for you are still fleshly. For since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly and are you not walking like mere men? So Paul is telling, and the opposite is saying, he is seeing Corinthians, he is seeing that they are not spiritually mature.
और यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस कुरिन्थी के लोगों में देखता है कि आत्मिक रूप से परिपक्व लोग वो नहीं हुए हैं.
आई एम सेइंग दिस टू अंडरस्टैंड, यू नो, व्हेन यू अंडरस्टैंड द कंट्रास्ट, वी कैन अंडरस्टैंड थिंग क्लियरली.
और इसको हम लोग बहुत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ताकि हम उस विरोधाभास जो है उसको हम अच्छी तरह से समझ सके.
इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रांग, दिस पीपल वर वीक लाइक ए चाइल्ड, चिल्ड्रन.
और परमेश्वर में बलवंत होने की जगह बच्चों के समान निर्बल यहाँ के लोग थे.
एंड पॉल हैड टू कंटिन्यू टू फील, थिंक अबाउट अ चाइल्ड, ही नीड टू बी ऑलवेज फेड विद मिल्क, ए मिल्क बॉटल.
और ये सोच के देखिए, एक बच्चे को हमेशा दूध के बॉटल से उसको पिलाना पड़ता हो.
That child cannot eat anything solid food at all.
और वो बच्चा कभी भी एक अच्छा ठोस खाना कभी नहीं खा पाता.
So we can be spiritually like a child. Someone will always need to pamper us and keep on feeding soft, solid thing.
और हम आत्मिक तौर से उस बच्चे के समान हो सकते हैं. हमेशा हमको जरूरत पड़ती है कोई हमको आके उस दूध को पिलाए या हमको शाबाशी दे चलाए.
द हार्ड truth about our own life, we cannot accept it, we'll get discouraged.
और बहुत ही एक सत्य ये है कि हम उसको हमको मानते नहीं, लेकिन हम निराश हो जाते हैं.
We cannot digest it.
और हम उसको पचन नहीं कर पाते.
We are always looking for milk. Somebody always feeding with a feeding bottle.
और हमेशा हमको ये रहता है कि कोई आकर हमें उस दूध की बॉटल से हमको दूध पिलाए.
Are we happy with such a life?
और क्या हम ऐसे जीवन से खुश है?
So here one mark of being child is a jealousy and strife.
और जो बच्चे के समान जो जिसकी आत्मिक अवस्था होती है उसका चिन्ह यह है कि वो लोग दूसरों के प्रति डाह रखते हैं, जलन रखते हैं.
स्पिरिचुअल चिल्ड्रन कैन नॉट ईजिली गेट एनवियस एट अदर्स.
और जो आत्मिक रूप से जो बच्चे हैं वो औरों के प्रति बहुत ही जल्दी जलन रखते हैं.
व्हेन अदर्स आर प्रोग्रेसिंग दे कैन नॉट टॉलरेट इट.
और जब और लोगों की बढ़ती हो रही तब उसे वो सहन नहीं कर पाते.
दे कैन नॉट बेयर इट.
उसको वो सहन नहीं सहते नहीं पाते.
I say that in my own life. That is why I can share from my life. I'm speaking from my life.
और मैं अपने जीवन से
I could not see how others are progressing.
और ऐसा समय मेरे जीवन के अंदर था जब लोगों की बढ़ोतरी को नहीं देख पाता था.
I remember an example when I was young, when I saw another young brother progressing in the church, I became so envious about him.
और जब मैं जवान था और मैंने दूसरे एक जवान भाई को आगे बढ़ते हुए संपन्न होते हुए देखता, बहुत ही मुझमें एक जलन सी आई उसके प्रति.
But I did not accept those thoughts. I worked, resisted against those thoughts.
और मैंने इन विचारों को ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसके विरोध में मैंने कार्य किया.
I remember how I prayed, Lord, I would rather be allowed my spirit be tired, neck, some heavy millstone and drowned in Pawai Lake than harboring jealousy against his brother.
और मैंने इस प्रकार प्रार्थना किया कि प्रभु, जलन रखने के बजाय प्रभु मैं उस अपने गले में पाट बांधकर उस पवई के उस लेक में मैं डूबना चाहूंगा.
So when God found that I am really earnest about having victory about jealousy, God gave me complete victory in that area.
और सच में जब मैंने उसको खोजा, परमेश्वर ने पूरी तरह से उस क्षेत्र के अंदर, जलन रखने के क्षेत्र के अंदर मुझे विजय दिया.
I could easily rejoice that brother grow and I would also promote him, encourage him to go ahead of me.
और वो जब लोग मुझसे आगे बढ़ते तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उनको मैं आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करूं।
If you are weak, we yield to jealousy and envy quickly.
और जब हम निर्बल होते तो डाह या जलन के लिए हम बहुत ही जल्दी उस हमारे जीवन में
and
आ जाता है।
Second thing is strife.
और डाह।
Bible says that a man of God does not strive, does not struggle, does not pick a battle.
या झगड़ा करना कि बहुत जल्दी वो झगड़े करते हैं किसी
के साथ। Do we have tendency to pick up quarrels with others?
या क्या हम बहुत जल्दी लोगों के साथ झगड़ा करने लगते हैं?
This is a provocation we get, it triggers a battle inside.
और तुरंत हमारे अंदर ऐसी उसकाने वाली बात होती फिर झगड़ा आ जाता है।
It's a sign we are still babes inside, spiritual babies.
और ये चिन्ह है कि हम आत्मिक रूप से अभी भी बच्चे हैं।
We need to discourage, as we said, this I am telling at the end, we have opportunity, God is going to strengthen us if we are earnest.
और ये निराशा के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर सच में हमें वो बल देगा उसमें बढ़ने के लिए।
If there is a tendency, again, I could see in my own life, I can easily understand others, I can be compassionate to others. I have seen that in my own life, my ability, quickly, how quickly I used to pick fight with others.
और मैंने अपनी योग्यता में, अपने जीवन में देखा है कि बहुत अपनी योग्यता से मैं औरों के साथ झगड़ा करने के लिए शुरुआत, इसलिए मुझे औरों के साथ प्रति अनुकंपा होती है।
And I can see how God did a work over a period in my life, and I feel it is very hard someone to pick fight with me now, I believe.
और ये बहुत एक समय के बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर भी इस क्षेत्र में काम किया।
I am not available for a struggle or a quarrel with anybody.
और किसी के साथ झगड़ा करने के लिए मेरे पास समय नहीं, मैं उपलब्ध नहीं हूँ।
Any quarrel, two people are required, right?
और किसी भी झगड़े के लिए दो लोगों की जरूरत है।
I'm not available.
और मैं उसके लिए उपलब्ध नहीं हूँ।
So God can give victory in every area.
और परमेश्वर हर एक क्षेत्र के अंदर हमें विजय दे सकता है।
And may God really help us to be strong in the Lord and in the power of His might.
सच में परमेश्वर हमारी सहायता करे, उसमें बलवंत हो, उसके शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत हो।
May God help us to be strong, especially in His grace.
और सच में परमेश्वर उसके अनुग्रह के अंदर बलवंत होने के लिए मदद करे।
Praise God for the words God spoke to us.
और प्रभु की स्तुति उन वचनों के लिए जो आज हमसे प्रभु ने बात की।
It was a challenge to listen to brother speaking.
और ये बहुत ही चुनौतीदायक था उन वचनों को सुनना जो हमने अभी सुने।
That we have someone to look up to in the earth itself. That we have some example in the earth itself.
और हमारी दुनिया के अंदर ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनकी ओर हम देख सकते हैं।
That we can live in victory over sin.
ताकि हम पाप के ऊपर विजयी जीवन जी सकते
हैं। Like brother said, वो jealousy, we can have complete victory.
जैसे भाई ने बताया, जलन के ऊपर हम एक पूरी विजय के साथ जी सकते हैं।
When we hear so many words, sometimes we can get little feel down.
और जैसे हम बहुत सारे ऐसे वचन हमें मिलते तो कई बार हमें बहुत ही नीचा महसूस होता है।
But we need to remember that God always encourages us to go up, come up higher.
और परमेश्वर हमें हमेशा प्रोत्साहित करता है, स्मरण दिलाना अपने आप को कि हमें हमेशा परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहन देता
है। That is why he gives us these words. It's to bring us to a life where, which is beyond what we are living now.
परमेश्वर इसलिए अपने वचन को देता है जिससे कि जहां हम जी रहे उससे बढ़कर हम ऊपर की ओर उठे।
It says in Romans 8:1 that there is no condemnation for those who are in Christ Jesus.
और रोमियो 8:1 में इस प्रकार लिखा है कि जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा अब नहीं है।
For the law of the spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death.
क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है।
So when I live in the life of Jesus, I can have victory.
और जब मैं यीशु के जीवन में जीता हूँ तब मेरे पास विजय है।
When I don't have the life of Jesus, I will fall.
जब मेरे पास यीशु का जीवन नहीं है तब मैं गिर जाऊंगा।
I was thinking, am I always living in the presence of God?
और मैं सोच रहा था कि सच में हमेशा निरंतर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ।
When I lose the presence of God, when I during the day, that is the time when I fall.
और जब दिन में कभी जब परमेश्वर की उपस्थिति को खो देता हूँ वही समय होता है जब मैं गिरता हूँ।
Because that gives opportunity to the devil to bring everything inside, all the evil inside.
और वही शैतान को मौका देता है ताकि बुराई, सारी बुराई, दुष्टता हमारे अंदर मुझ में लेकर आए।
So I need to always pray, Lord, I want your presence always in my heart.
और मुझे इस प्रकार प्रार्थना करना है कि प्रभु निरंतर मेरे हृदय में तेरी उपस्थिति चाहिए।
God was showing me so many areas where, one area was God was showing me is when I am ignored completely, am I losing my rest?
और एक क्षेत्र जो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि जब एक कुछ क्षेत्र के अंदर बहुत पूरी तरह से मुझे अगर निकाल दिया जाए, नजरअंदाज किया जाए, तो क्या मैं अपने विश्राम को खो बैठता हूँ?
God showed me clearly how much unrest is there.
और प्रभु ने बताया कि कितना एक विश्राम नहीं होना, ऐसी एक चीज मेरे जीवन में थी।
So many things coming up that shows that I am not at rest.
और बहुत सारी चीजें इस प्रकार आना दिखाता है कि मैं मुझ में विश्राम नहीं है।
But that is that when I see that, what is my reaction?
और जब मैं उसको देखता हूँ तो मेरा प्रत्युत्तर क्या होता है?
Do I confess to the Lord, Lord, I am fallen in this area. I want to live in rest even if I am ignored completely.
Aur kya main kabul kar leta hu ki prabhu main is kshetra mein gira hu aur aapka vishram mujhe chahiye.
That also shows that I am not secure in my father. I want someone else also to approve me.
और ये भी दिखाता है कि मैं अपने स्वर्गीय पिता के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हूँ. मैं चाहता हूँ कोई और आकर मेरी पुष्टि करे.
When I am absolutely secure in my father, I will not be bothered if no one, if everyone ignores me and I am alone.
अगर मैं अपने पिता के अंदर सुरक्षित हूँ तो अगर सारे लोग भी अगर मुझे तिरस्कार करते हैं, अगर मैं अकेला हूँ तो अभी कोई फर्क नहीं है.
I will instead be able to encourage others.
लेकिन उसके बजाय मैं औरों को प्रोत्साहित कर पाऊंगा.
And that is the life I want.
और वो जीवन मुझे चाहिए.
As brother said, he was really desperate for that life. And that's why God could work in him.
और जैसे भाई ने कहा कि उनमें वो तीव्र इच्छा थी, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वो विजय दिया.
And that is what I also really want in my life, that in these areas where God is showing me my failures, I want to repent and really ask the God to help me to overcome in those areas.
और सच में जो क्षेत्र के अंदर मैं असफल रहा हूँ, परमेश्वर सच में मुझे उसमें मदद करे और उसमें विजय हो सकूँ.
And then I can be helping out those who are weak.
और उससे मैं मदद कर सकूँ जो निर्बल है उनकी.
Even at home I can help out someone who is weak.
और घर में अगर कोई निर्बल है उसकी मैं सहायता कर सकूं.
And in turn others also can help me in my weak areas.
और उसके बजाय और भी जो मेरी निर्बलता है उसमें वो दूसरे मेरी सहायता
so,
कर सके.
So together we can build the body.
और उस साथ में हम मिलकर परमेश्वर के देह को बना सके.
When there is jealousy then there is division and the body of Christ can never be built.
और जहां जलन आ जाता है वहां परमेश्वर के देह नहीं बन सकते, वहां विभाजन आ जाता है.
And sometimes when I don't acknowledge my jealousy then it gets hidden and then God cannot work.
और जब मैं अपनी जलन को नहीं पहचान पाता, वो गुप्त में अंदर छुपा हुआ रहता है, तब परमेश्वर कार्य नहीं कर पाता.
God wants that my life and my home should reflect the glory of God.
और परमेश्वर चाहता है मेरा जीवन, मेरा परिवार परमेश्वर की महिमा को प्रस्तुत करे.
And that can happen when I am weak only.
और ये तभी हो सकता है जब मैं निर्बल होता हूँ.
When I think I am very spiritual and when I think I am very I have become some big person, then the other person cannot be encouraged.
जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं बहुत ही ऊपर आ चुका हूँ या बहुत ही आत्मिक बन चुका हूँ, तब सामने वाला व्यक्ति उससे प्रोत्साहन कभी पा नहीं सकता.
I need to come to down to the level of that person whom I am with.
और जिस व्यक्ति के साथ हूँ उस व्यक्ति के स्तर तक मुझे आना है.
I don't want to think that I am some big person, but the attitude that is there should be the attitude of humility and going down.
और मुझे अपने आप को बड़ा व्यक्ति नहीं सोचना, लेकिन मुझे वो जो नम्रता का स्वभाव है, नीचे जाने का वो स्वभाव.
Pride is the reason for all falls in my life.
और हर एक जो मेरा गिरने का जो बातें है उसका कारण ये है, घमंड है.
And God has written his word that God opposes the proud.
जैसे वचन में हमने पढ़ा कि वो घमंडियों का सामना करता है.
So I need to really ask God, Lord, help me to be humbled.
और सच में परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मुझे मदद कर ताकि मैं नम्र रह सकूं.
Help me to go down.
मदद कर कि प्रभु मैं नीचे जा सकूं.
Help me to show that I am available for help.
और मैं प्रभु मारी मदद कर ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं सहायता के लिए उपलब्ध हूं.
That I can go down and help others.
ताकि मैं अपने स्तर से नीचे जाके औरों की मदद कर सकूं.
Brother was speaking about the mind area also.
और भाई ने अभी मन के बारे में भी बात की.
In that area also God has shown me that it's a continuous battle.
और प्रभु ने वहां पे मुझे दिखाया कि वहां पे निरंतर एक युद्ध है.
If we yield then we will very badly we will fall.
और अगर हम अपने आप को सौंप देंगे वहां पर तो बहुत ही बुरी तरह से वहां पे हम हारेंगे.
God wants us to always like when the thoughts come of whatever discouragement or of anger or whatever like the bitterness whatever comes, I should be able to like by the word of God I should be able to resist it.
और कभी भी ऐसे निराशा के या कड़वाहट के या गुस्से के क्रोध के जब ऐसे विचार आते हैं तब हमें वचन के द्वारा उसका सामना करना है.
Don't allow that to harbor and it becomes a big problem then later.
और हमें उसको अनुमति नहीं देनी ऐसे विचारों को हमारे अंदर वो घर करते जाए और वो कड़वापन आता जाए.
And when it comes itself I should by the word of God take victory over it.
और जब वो आता है तभी हमें मुझे प्रभु के वचन से वहां पे विजय लेना है.
And as brother said that his Holy Spirit is available for us to help us in our weakness.
और जैसे भाई ने बताया कि उसका पवित्र आत्मा हमारे लिए उपलब्ध है हमारी निर्बलता में सहायता करने के लिए.
So whenever we are weak we can cry out to him.
और जब भी हम निर्बल है उसको हम पुकार सकते हैं.
We can cry out in our heart, Lord, I don't want to fall here.
और हमारे मन में हम पुकारे कि प्रभु मैं इस क्षेत्र में नहीं गिरना चाहता.
I don't want to harbor any hatred or bitterness against this person.
और इस व्यक्ति के प्रति किसी भी घृणा को मैं अपने मन में नहीं रखना चाहता.
I don't want to allow the devil to discourage me.
और मैं नहीं चाहता शैतान आकर मुझे निरुत्साहित या निराश करे.
I want to have the word of God in my heart always so that I can withstand the whatever the devil brings into my mind, I can go against it.
Aur main chahta hu ki prabhu ki mere hriday ke andar wo vachan rahe taki shaitan jo kuch bhi lata hai uske virodh mein khada reh saku.
Always as brother said that idle mind, I should never have a idle mind, always filling my mind with the word of God.
Aur jaise bhai ne kaha ki hamara man khali nahi hona chahiye, hamare man ko hamesha prabhu ke vachan se bharna
hai. That doesn't mean I always everywhere I am reading the Bible. It means that I am continuously listening to God, what he has to say to me, and God speaks to me through his word, not by just reading, but I should be able to listen to him.
Aur iska matlab ye nahi ki har jagah par main keval vachan padhta rahu, lekin mere kaano ko hamesha khula rakhu taki main uske vachan ko sun bhi saku jo usko kya kehna chahta
hai. Bible reading is good, but I need to listen more.
Aur Bible padhna achhi baat hai, lekin unko sunna bhi hai.
All through the day I need to always open my ears and listen.
Aur din bhar hamare kaano ko khula rakhe humko sunna
hai, so that I will always have a word in my heart.
ताकि हमेशा मेरे हृदय के अंदर वचन रहे.
As Psalms it says that in 119 it says, your word I have hidden in my heart that I may not sin against you.
119 भजन संहिता में लिखा है, तेरा वचन अपने हृदय में मैंने रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं.
So if I have the word of God in my heart, I will not sin.
अगर परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में है तो मैं पाप नहीं करूंगा.
God is able to help us in all our needs.
और परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों में हमारी मदद करने के लिए है.
Thank God for the encouragement.
और परमेश्वर का धन्यवाद इस प्रोत्साहन के लिए.
And the encouragement to move forward.
और ये प्रोत्साहन है कि हम आगे बढ़ने के लिए.
सो स्पेशली फॉर मी गॉड वॉज एनकरेजिंग मी दैट आई शुड नॉट रिमेन इन द सेम स्टेट, आई नीड टू मूव फॉरवर्ड.
और खासकर मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए कि मेरा जो अभी व्यक्तिगत स्तर है वहाँ ना रहकर अभी आगे की ओर बढ़ने के लिए.
एंड वी लुक एट जीसस.
और हम यीशु की ओर देखते रहे.
यस दैट ही इज द वन हु हैज रन द रेस बिफोर मी.
और यीशु ही है जिसने मेरे पहले उस दौड़ को दौड़ा है.
एंड व्हाट एवर द सिचुएशन इज ही कैन लिफ्ट मी अप.
और कोई भी परिस्थिति हो प्रभु मुझे वहां से उठा सकता है.
वन वर्स इन हिब्रू सेज दैट ही इज एबल टू सेव अस टू द अटरमोस्ट.
और इब्रानियों के अंदर एक वचन है कि कहीं पर भी हम गिरे हैं वहां से वो उठा सकता है, वो उद्धार दे सकता है.
व्हेन इट सेज इट इज ही इज एबल टू सेव अस टू द अटरमोस्ट, इट मींस दैट whatever the depth of the pit is, it does not matter.
और इस वचन का मतलब ये है कि उस गड्ढे की या उस गहराई कितनी भी क्यों ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
It does not matter if my thought life is so bad that I cannot think in a right way.
और इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा विचार जो मैंने कितने गंदे हो गए हैं कि मैं एक सही दिशा में सोच नहीं पाता
हूं. In Genesis it says at the time of Noah that the men's imaginations were विकेट कंटिन्यूली.
और उत्पत्ति के अंदर हम देखते हैं कि नोआ के समय के अंदर जो लोग थे उनके निरंतर बुराई उनके मन में होती थी.
सो दैट वी नो दैट व्हेन मोस्टली व्हेन वी आर यंग एंड आफ्टर दैट आवर माइंड्स आर सो करप्टेड समटाइम्स दैट वी ओनली थिंक बैड थिंग्स.
और जवान होने के समय पे बहुत ही ऐसे समय होता है जहां हम निरंतर बुराई को हमारे मन में सोचते रहते हैं.
एंड इट कैन हैपन दैट इट इज टोटली सो मच दैट इट्स लाइक ए फ्लड व्हिच फ्लोस फ्रॉम आवर माइंड फ्रॉम आवर थॉट्स.
कई बार इतना अधिक होता है जैसे एक बाढ़ के समान हमारे मन से वो ये बुरे विचार बहने लगते हैं.
सो वी फील दैट वेदर गॉड कैन डिलीवर मी फ्रॉम दैट सिचुएशन.
और हम सोचने लगते हैं कि क्या परमेश्वर ऐसी परिस्थिति से क्या हमें मुझे छुड़ा सकता है.
बट वी हैव ए सेवियर हु हैज कम टू save sinners.
और हमारे पास ऐसा उद्धार करता है जो पापियों को बचाने के लिए आया है.
So when we look at Jesus, there is no need to feel that I am someone different who is different from anybody.
और जब हम यीशु की ओर देखते तभी ऐसे सोचने की जरूरत नहीं कि मैं लोगों से भिन्न हूँ, मेरे जीवन के अंदर ऐसे पाप है.
Jesus come to save sinners.
और परमेश्वर यीशु मसीह जो है पापियों का उद्धार करने के लिए आए हैं.
Jesus not come for righteous people.
और यीशु धर्मी लोगों के लिए नहीं आए हैं.
Jesus come for people who are fallen, who are totally in their sin, but Jesus come to deliver us from our sin.
और यीशु ऐसे लोगों के लिए आया है जो पूरी तरह से गिर चुके हैं ताकि उनको उठा सके.
एंड दैट्स व्हाई वी डू नॉट हैव नो प्लेस फॉर होपलेस कंडीशन.
और इसलिए हमारे जीवन के अंदर ऐसी कोई आशाहीन अवस्था नहीं होनी चाहिए.
वी ऑलवेज हैव ए होप.
और हमारे पास हमेशा एक आशा है.
बिकॉज जीसस इज देयर हु विल वर्क इन अस.
क्योंकि यीशु मसीह है जो हमारे जीवन में कार्य करेगा.
गॉड इज देयर हु वर्क्स इन अस.
और परमेश्वर जो हमारे जीवन में कार्य करता है.
एंड वेयर वी आर नॉट एबल ही विल मेक अस, ही विल एनेबल अस.
और जहां हम योग्य नहीं वहां पे वो हमें योग्यता देगा.
एंड वेयर वी आर वीक ही विल स्ट्रेंथन अस.
और जहां हम निर्बल है वहां हमें वो बल देगा.
रियली गॉड इज टॉकिंग टू अस.
सच में परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है.
नाउ गॉड इज आस्किंग अ क्वेश्चन.
और परमेश्वर हमसे प्रश्न पूछ रहा है.
हाउ Do I do my things or how do I work?
और कैसे मैं अपनी चीजें करता हूँ, कैसे मैं अपने काम को करता हूँ?
Is it through my own strength, through my own understanding?
क्या अपने खुद के समझ से, अपने खुद की ताकत से?
Or is it by the strength what I receive from the Lord?
या परमेश्वर की सामर्थ्य जो मुझे उससे मिलती उससे मैं करता हूँ.
Yes, God is asking each and every one of us.
और परमेश्वर आज हम सबों से ये प्रश्न पूछ रहा है.
How do we do our things?
और हमारे जीवन के कामों को हम कैसे करते हैं?
Who is your strength today?
और आज हमारा बल क्या है जीवन में?
Is your strength your own will?
क्या हमारी खुद की इच्छा क्या हमारा बल है?
Is your strength your own understanding?
क्या हमारी समझ हमारा बल है?
And do you think that you can win it with your own self and your own understanding and wisdom?
और क्या हम ये सोचते कि हमारे बुद्धि हमारे समझ और बल से हम जीत सकते हैं?
Or you count it that it can be done only through my strength?
और या हमें ऐसा लगता है कि खुद के बल से मेरे बल से ये हो सकता है?
That's what God is speaking to us.
और परमेश्वर हमसे पूछता है.
Because when you work and when I do things through God's strength.
और जब मैं काम करता हूँ परमेश्वर की ताकत से करता हूँ.
It is like I do it without grumbling.
और इसका मतलब यह है कि बिना कुड़कुड़ाहट के मैं करता हूँ.
And it's the understanding of God.
और परमेश्वर की समझ से.
You know, Philippians chapter 2 verse 14 it says.
और फिलिपी 2:14 के अंदर इस प्रकार कहता है.
And the verse 13 it says it's God who is working inside us.
और वहाँ पे 13 वचन में लिखा है परमेश्वर जो हमारे भीतर कार्य कर रहा है.
And God has to work in us.
और परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करना है.
I should allow God to work inside me and to build in my strength.
और मुझे परमेश्वर को अनुमति देना है कि हम मुझे परमेश्वर बनाए अपने उसकी ताकत में.
If I don't allow God to work inside me, I will do things by grumbling and I will be not satisfied by that.
और अगर परमेश्वर को मैं अनुमति नहीं दूंगा मुझ में कार्य करने के लिए तो मैं कुड़कुड़ाहट दूंगा, कुड़कुड़ाहट के साथ सब कुछ करूंगा और मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा.
Philippians chapter 2 verse 14 it says.
और फिलिपी 2:14 इस प्रकार कहता है.
Do all things without grumbling or questioning.
सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो.
And when I do that, and how my life should be.
और जब मैं इस प्रकार करता हूँ मेरा जीवन कैसा होना चाहिए?
That you may be blameless and innocent children of God.
ताकि तुम निर्दोष और भोले भोले परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने हो.
And it's not that I am placed in a very good place or I am in a very good I am kept in a very spiritual area.
इसका मतलब ये नहीं कि बहुत एक आत्मिक एक माहौल के अंदर मुझे रख दिया जाए.
He writes further. He says when I have to be blameless, I have to be blameless in the midst of crooked and twisted generation.
और हमें निर्दोष होना है किसके बीच में? हठीले और टेढ़े लोगों के बीच में.
That means things around me is not going to favor me always.
और हमेशा मेरे जीवन के अंदर अनुग्रह शायद नहीं होगा चारों तरफ से.
And there is going to be defeat.
और वहाँ हार शायद हो सकती है.
There is going to be hatred.
और वहाँ घृणा हो सकती है.
And there is going to be lots of lustful thoughts coming into my mind.
ऐसा हो सकता है समय जहाँ मेरे मन के अंदर बहुत ही एक वासनाओं से भरे विचार आ रहे हैं.
By looking at things around myself.
मेरे आसपास की चारों ओर की बातों को देखने के बाद.
And when I hear through my ears lots of things, lots of hatred develops in me.
और बहुत मेरे कानों से जब मैं सुनता हूँ इसे घृणा मेरे मन में उत्पन्न होती है.
And he says, "You are in the midst of crooked and perverse generation."
और वहाँ लिखता है कि तुम एक टेढ़ी लोगों के बीच में हो, हटीले लोगों के
बीच
में.
And among and in that place, in that area.
और उस स्थान में, उस जगह पर.
I need to shine.
वहाँ पर मुझे चमकना है.
And I need to shine as lights.
और मुझे एक ज्योति के समान चमकना है.
I need to be as a testimony.
और वहाँ एक गवाही होना है.
And here God is telling to me that it is not going to be possible by your own strength.
और परमेश्वर मुझे बताना चाहता है कि ये सारी चीजें मुझे अपनी खुद की बल से नहीं हो सकता.
You don't think that it is going to happen by your own wisdom.
और ये हम सोच नहीं सकते कि हमारी ये खुद के बुद्धि से होगा ये.
That's what today's word starts that where we read this morning time.
और जैसे ही आज सुबह हमने वचन को सुना.
And he says there the secret is given.
और यहाँ पे एक रहस्य वहाँ दिया गया है.
Where he says I have learned the secret.
और वो कहता है कि उस रहस्य को मैंने सीख लिया है.
And learning the secret is whether I have plenty or whether I have good, whether I have abundance or whether I have less.
और ये रहस्य उसने सीख लिया कि जब भरपूरी है या कमी घटी है तब भी.
Whether things around me are favoring to my or whether it does not favor to me.
चारों तरफ की मेरी जो परिस्थितियां है मेरे 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 तरफ अच्छी है या फिर अच्छी नहीं है.
He says one thing.
वो एक चीज कहता है.
That I will do it through the strength of to the strength of my Lord.
और वो कहता है कि मैं परमेश्वर की बल से वो सारी चीजें करूंगा.
And it is his strength by which I work.
और उसी की सामर्थ और बल के द्वारा मैं काम करता
हूं. And God is telling us the same thing and comforting us this morning time.
और आज समय परमेश्वर हमें वही बातें बता रहा है और प्रोत्साहित करता है.
It's not only for me.
ये मेरे लिए नहीं है.
It's for each and every one of us.
और ये हम सबों के लिए यहाँ पर है.
Maybe somewhere there could be somewhere some defeaters there where we could have tried in our own understanding, in our own thoughts.
और ऐसी कोई क्षेत्र हो सके जहाँ हम हारे हुए हैं क्योंकि हमने अपने बुद्धि से अपने बल से वहाँ पर प्रयत्न किए हैं.
We can take it as a promise this morning time.
और आज एक वायदे के रूप में इसको हम ले.
That strength is there for us.
और हमारे लिए वो बल है.
And he is the one who is giving us that power when we are weak.
वो परमेश्वर है जो हमें वो बल देता है जब हम निर्बल होते हैं.
Let us shine.
हम ज्योति के समान चमके.
May the Lord lead us and bless us.
परमेश्वर हमें आशीष दे.
In Jesus name, amen.
यीशु के नाम से आमीन.